HD Smartcast. आप सुन रहे हैं HD Smartcast और ये है फीवर FM प्रोडक्शन।
हेलो हेलो हेलो, मेरा नाम शरत है और आपका दिल से स्वागत करता हूं बाउंस बैक भारत के सेकंड सीजन में। और इस बार का पॉडकास्ट पिछले पॉडकास्ट से भी कमाल है। देखिए, इस कोविड ने हम सबको एक ऐसे सिचुएशन में डाला, एक ऐसी स्थिति में डाला जहां से हम सब बाउंस बैक करना चाहते हैं और धीरे धीरे कर भी रहे हैं। लेकिन जो हमारी जर्नी है वो इतनी आसान नहीं होने वाली। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े दिग्गजों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। सो वी क्रिएटेड द बिगेस्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटीज, OTT स्टार्स, स्पोर्ट्समैन, बिजनेस लीडर्स। इंडिया का हर बड़ा आइकन इस प्लेटफॉर्म पे आ गया है एंड दे आर टेलिंग अस हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम एडवर्सिटी। है ना इंटरेस्टिंग? तो शुरू करें सिलसिला बाउंस बैक भारत का। बाउंस बैक
भारत। तो पाजी, अमृतसर से इधर आना, लाफ्टर चैलेंज जीतना, उसके बाद खुद का अपना शो, इतना बड़ा नाम, हिंदुस्तान में कॉमेडी की पहचान बन जाना, आपने कभी सोचा था फीवर FM पर आएंगे?
मैंने उस दिन सोचा था जिस दिन मुझे फोन आया। मैं ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लाइफ में आप प्लान नहीं करते। और मुझे ये लगता है कि लाइफ में ना कभी कभी हम अपने आप को लेके बड़ी छोटी प्लानिंग कर लेते हैं और ईश्वर की प्लानिंग शायद हमेशा ही बेहतर होती है ऑब्वियसली। और बड़ा सौभाग्य मेरा आज फीवर 104 में मैं आया हूँ, नहीं तो आज तक मुझे फीवर होता रहा, मैं कभी फीवर में है नहीं।
बट ये पेटेंट डायलॉग बाजी आपका इतना फेमस हो गया ना कि आपसे जो मुलाकात करे वो पहला सवाल यही पूछना चाहता है।
मुझे पूछना होता कोई पूछ लेते हैं, फिर मेरे को कोई जवाब नहीं आता।
आप वापस पूछ लो बाजी, एडिट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैं कपिल पाजी से ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जर्नी के बारे में जो कहानियां पढ़ रखी हैं, जो सुन रखी हैं कि कैसे आपका पहले एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ लाफ्टर चैलेंज में, फिर आपने दोबारा ऑडिशन दिया और फिर वो टाइटल आप जीत गए, ये जी, वहां से जो जर्नी शुरू हुई भाई वो अब तक कैसी रही है? बहुत सारे इंटरव्यूज में हमने देखा है, पर जानना ये चाहते हैं कि कपिल शर्मा उस वक्त क्या फील कर रहे थे, उस वक्त कपिल शर्मा के दिमाग में क्या था
जब रिजेक्शन हुआ था
इस पूरे सफर में?
देखो, इसमें तो अगर मैं कहूँ कि क्या फील कर रहा था, तो ये जर्नी बहुत लंबी रही है और लोगों ने टीवी पे देखना शुरू किया 2007 से, लेकिन मैं काम कर रहा था 1997 से और 10 साल थिएटर रीजनल चैनल्स पे कुछ करते रहे। और कई बार लोग बोलते हैं ना कि आपने बड़ा स्ट्रगल किया, मेरे को ये लगता है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं था, कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसा तो था नहीं कोई कि कोई बाप दादा का बिजनेस था या उसमें चले जाते, पिता मेरे सरकारी नौकरी में थे, यू नो, तो वो सरकारी नौकरी लेना तो और बड़ा मुश्किल काम है। तो मिक्सचर रहा है बहुत सारे इमोशंस का, उतार चढ़ाव लाइफ में रहते हैं, हर किसी की लाइफ में रहते हैं। तो इतना ही सोच के आया था मैं लाफ्टर चैलेंज तक जाना है और उसके बाद मेरे कुछ लाइव शोज लगने शुरू हो जाएंगे और थोड़ी रोजी रोटी चल जाएगी, बस ठीक है। बस उसके बाद तो ये है कि जब आप काम करने लगते हो तो फिर भगवान अपने आप रास्ते बनाने लगता है, तो शुक्र ऊपर वाले का, बहुत बड़ा मजेदार सफर रहा है।
बट मैं आपको बताऊं कि जब आप टीवी पे आ रहे थे बाकी शोज में, जब उसके बाद आपने कॉमेडी सर्कस जब किया, तो मुझे वो टाइम याद है कि मेरे आसपास जितने लोग थे, चाहे मेरे परिवार के लोग हों, दोस्त हों, तो वो आपका एक्ट देखने के लिए रुके रहते थे कि अच्छा अभी कपिल शर्मा आएगा ना, फिर वो देख लेते हैं, उसके बाद ही लेंगे, या कुछ चल रहा था थोड़ा स्किप कर लो। तो हिंदुस्तान ने आपको उस वक्त से जो प्यार देना शुरू किया, उसके बाद जब आपका खुद का शो आया, तो इस शो की तैयारी कैसे हुई, ये शो शुरू कैसे हुआ, दिमाग में कैसे आया था कपिल शर्मा शो?
यार ये शो एक्चुअली ये कोई शो नहीं था, ये तो मैं गया था कलर्स के ऑफिस में, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप हमारा एक शो होस्ट करोगे। मैंने कहा कौन सा? बोलते झलक दिखला जा। मैंने कहा इसमें क्या करना है? बोलते आपको होस्ट करना है, आप और मनीष पॉल। मैंने कहा अच्छा, तो आप BBC करके एक प्रोडक्शन हाउस है, उनके उनसे जाके मिल लेना। तो मैं मिलने गया उनको, वो मुझे देख के थी आप बहुत मोटे हैं, आप थोड़ा वजन कम करो। मैं जाके चैनल में बोल दिया, मैंने कहा यार वो मेरे को बोल रही है वजन कम करो, तो ये क्या हिसाब था? चैनल ने उनको फोन किया कि नहीं नहीं यार ये लड़का अच्छा है, इसको एज ए होस्ट रख लेते हैं और वजन वजन होता रहेगा कम। सो मैं जब झलक दिखला जा की मीटिंग के लिए गया, तो मैंने कहा आप एक कॉमेडी शो क्यों नहीं बनाते, उसको बोला। बोले आपके दिमाग में कुछ है? मैंने कहा हाँ है, कहते सुनाओ। मैं कहा दो दिन का टाइम दो। मेरे दिमाग में सच्ची में कुछ नहीं था, तो मैं घर जाके मैंने ये सोचा कि मुझे मुझे क्या करना है, बेसिकली मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। मुझे कुछ बनाना नहीं था, मुझे वही करना था जो मैं अच्छा कर सकता हूँ, यू नो। और फिर अच्छे में भी उस समय आपको लगता है कि आप अच्छा कर रहे हो, हालांकि दुनिया में बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन मैं स्टैंड अप करने का मुझे मजा आता था। फिर कॉमेडी सर्कस जब कर रहे थे तो फिर यू नो स्केच कॉमेडी करते थे हम लोग, कॉस्ट्यूम ड्रामा होता था। तो मैंने कहा ये सारे एलिमेंट्स, जब लाफ्टर चैलेंज में मैं स्टैंड अप करता था, कॉमेडी सर्कस में मैं स्केच कॉमेडी करता था, लाइव शोज में मैं स्टैंड अप करता हूँ, लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ पब्लिक के साथ, तो ये सारे एलिमेंट जिन जिनको मैं इंजॉय करता हूँ वो सारे एक ही शो में डाल के एक ऐसा शो बनाते। तो मैंने जाके उनको सुनाया, उन्होंने बोला अच्छा कितने मिनट का होगा? मैंने कहा इसमें इतने मिनट का स्टैंड अप होगा, इसमें फिर गैग होगा, फिर सेलिब्रिटी आएंगे, फिर उनका इंटरव्यू होगा, और उसके बीच में हमारे कैरेक्टर्स फैमिली आएंगी। तो करते 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 उन्होंने पूरा टाइम जो लिखा ना, इतने मिनट आपका, इतने मिनट ये, अभी भी बोलते 5 मिनट रहते हैं। तो मैं कहा अच्छा 5 मिनट का कुछ और सोचते हैं। लेकिन जब वो शो शूट हुआ उनको शायद 70 मिनट का कॉन्टेंट चाहिए था, हमारा 120 मिनट का गया।
क्या
उनको काटना मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि यू नो बातें करते करते कब फैल जाते हैं हम पता नहीं चलता, और हम तो वैसे ही फैलने वालों में से। तो बस फिर वो शो शुरू हुआ, फिर लोगों का बहुत प्यार मिला उस शो को, आज तक चल रहा है ना। 25 एपिसोड के लिए बनाया था हमने, और अभी रिसेंटली जब मैंने नया सीजन शुरू किया तो मेरे ख्याल से 500 एपिसोड कंप्लीट हो चुके थे। 500
क्या बात,
फर्स्ट एपिसोड था एक्चुअली।
क्या बात,
बस शुक्र है ऊपर वाले का।
अजी इसके अलावा जिंदगी में एक ऐसा भी हिस्सा रहा जब आप बहुत परेशान रहे, अकेले रहे, गुस्सा भी आता होगा, और वो तमाम चीजें जो एक फेज है इंसान की, जब आपने बुलंदियां देखी हैं उसके बाद जिंदगी में एक ब्रेक आ जाता है। उस ब्रेक से जब आप बाहर निकल रहे थे, जिस दौर से अभी हमारा हिंदुस्तान गुजर रहा है कि अचानक से सब कुछ थम गया और उसके बाद हम बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कपिल शर्मा ने खुद को कैसे हिम्मत दी, कैसे लगा कि हम वापस से बाउंस बैक करेंगे, मेरा टाइम वापस आएगा? मुझे याद है क्योंकि अखबारों ने बहुत कुछ गलत सलत लिखना शुरू कर दिया था कि कपिल का वक्त खत्म हो गया, अब दोबारा नहीं आएगा, पर जिस तरीके से आप वापस आए, मेरे ख्याल से बाउंस बैक इससे बेहतर तरीका का और कुछ नहीं हो सकता।
मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसा वक्त आता है। देखो बुलंदियों पे पहुंचना भी शायद एक वक्त पे आपको लगता है कितना मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पे बने रहना, और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिक्स होती है, आपके इर्द गिर्द टांग खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। सो उस समय आपको ना, जो मुझे उस समय फील हुआ, मुझे लोगों पे भरोसा होना बंद हो गया था कि यार कोई भी आके मेरे सामने कोई ऐसी बात करता है और पीठ पीछे जाके ये बोलता है मेरे बारे में, तो भरोसा आदमी करे किस पे? सो बड़े चंद लोग होते हैं जिनके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। खैर एनीवेज, मुझे ये लगता है कि आप अगर आप जिस वजह से जाना जाता हूँ मैं हंसी मजाक करने के लिए, यू नो अपने शो की वजह से, तो मैं वही बंद करके बैठ गया था। मुझे किसी ने कहा नहीं था बंद करने को। उस समय जो भी मेरी फिजिकल कंडीशन थी, मेंटल कंडीशन थी, मेंटल इलनेस की मैं बात करना चाहूँगा, तो मुझे लगता है कि उसका सही तरीका यही था कि मेरे काम की वजह से लोगों ने मुझे प्यार दिया, और फिर वापस काम पे आओ, वापस शो बनाओ, और वापस उसी से जवाब दो। कब तक आप ट्विटर पे लड़ते रहोगे लोगों के साथ और ये सब करोगे, है ना? एक एक आदमी को जवाब क्या देना, आप अपना वापस जिसमें आप अच्छे हो वही करो, और लोग वापस आपको उतना ही प्यार करते हैं। और लोगों ने कभी प्यार करना बंद ही नहीं किया, ये तो मीडिया वाले कभी कभी लिख देते हैं उसका वक्त खत्म, ये वो। मैं कहा मुझे अभी तक पता नहीं चला मेरी लाइफ में क्या होने वाला क्या नहीं, आप कौन से ज्योतिषों की आप ये लिखना शुरू कर देते हो? ये बड़ी, पता है, हमारी एक बड़ी ये दुख वाली बात है एक्चुअली, कि अपनी न्यूज बेचने के लिए, अपने लाइक्स लेने के लिए, आज आप तो समझते हो इन सब चीजों को, आजकल इतने वेब पोर्टल आ गए हैं, सबको अपने लाइक्स बढ़ाने, कुछ भी छाप देते हैं और पॉजिटिव चीज बिकती नहीं है
जी।
तो फिर वो नेगेटिव हेडलाइंस बनाते हैं, तो ये सब होता है, पर ठीक है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। आई थिंक सबकी लाइफ में अपनी अपनी, गुरु नानक देव साहब की एक लाइन आती ना उनकी बाणी में, उन्होंने बोला कि नानक दुखिया सब संसार। तो मुझे लगता है कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे होते हैं, पर हाँ उससे बाहर जब आप निकल आते हो तो मुझे लगता है कि वो बोलते हैं ना कि नौजवान से व्यक्ति व्यक्ति बनना, तो ये आपको बुरा वक्त ही सिखाता है, क्योंकि अच्छे वक्त में तो आप लगे हुए हो पैसा कमाने में, आप शोज कर रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको सीखने का वक्त ही नहीं है। तो सीखने का वक्त वही होता है जो मेरा बीच में आया था। अब हंसी आती है वो वक्त को सोच के, हालांकि उस वक्त बहुत बुरा फील होता था, बट हाँ वक्त ने बहुत कुछ सिखाया है। सो वक्त जो है वो बहुत बड़ा टीचर है।
मेरी कुछ दिनों पहले इसी शो के लिए बात हो रही थी, सुनील ग्रोवर पाजी भी आए थे, उनसे भी बातचीत हो रही थी। तो बातचीत के दरमियान कई लोगों ने उनसे जो सवाल पूछे थे वो सवाल मैंने उनसे पूछे। हालांकि खैर ये वो प्लेटफॉर्म नहीं है जिसके बारे में बात की जाए, लेकिन इस मैं कपिल शर्मा से जानना चाहता हूँ, एक पूरा लंबा सफर, सब साथी मिले और उसके बाद पूरे देश को हंसाया, हर वक्त हम ये इंतजार करते रहते थे सब साथ आ जाए। अगर आप कहना चाहें इस बारे में तो कैसा फील करते हैं इस वक्त, इस पूरी जर्नी के बारे में, उन दोस्तों के बारे में? किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं कर रहा
जी। नहीं, बड़ा अच्छा सफर रहा सुनील पाजी के साथ भी और जितने भी सारे दोस्त हैं और जो अब भी हैं मेरे शो में, ये और भी पुराने दोस्त हैं मेरे, तो उस समय राइवल होते थे
कॉमेडी। अब वो आपकी तारीफ भी कर रहे हैं।
हाँ, अभी तो अब हम साथ में मिलके शो करते हैं, तो बड़ी अच्छी जर्नी रही है और हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और बस जहाँ जो भी रहे खुश रहे। और बाकी हाँ, जैसे मैंने पहले कहा कि आदमी सीखता रहता है हर दिन, तो हम भी नई नई चीजें सीखते रहते हैं। जिंदगी जीना आ जाए एक जिंदगी में, वो ही बहुत बड़ी बात है। जिंदगी जीनी नहीं आती कई बार इंसान को, हम लोग लगे रहते हैं दौड़ में, तो हम भी सीख रहे हैं।
मुझे 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 आपसे एक चीज जो बहुत साफ तौर पे समझनी है, हिम्मत कैसे देते रहे आप उस वक्त में खुद को? क्या मतलब परिवार का सपोर्ट, या आप खुद को कैसे समझाते थे कि चलो ये सब जो हो रहा है ये बदल जाएगा, ये कैसे समझाते थे?
अच्छा, उस वक्त इंसान को नहीं लगता है कि कुछ बदलेगा, क्योंकि उस वक्त तो सारी चीजें नेगेटिव ही दिखती हैं। पता नहीं दिमाग में कौन सा केमिकल रिलीज होता है जो आपको पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता। बट हाँ, उस समय मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो मेरी फैमिली, और सबसे ज्यादा मेरी जो स्ट्रेंथ थी वो उस समय गिन्नी थी, बिकॉज गिन्नी को सब कुछ पता था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, और किसी को पता नहीं था। मेरी मम्मी को मेंटल इलनेस क्या होती है या डिप्रेशन क्या होता है, वो बहुत सीधे साधे भोले गाँव के लोग हैं, उनको नहीं पता है। उनको क्या, मुझे भी नहीं पता था। मतलब मुझे भी पेपर वालों का भला हो जिन्होंने लिखा कपिल शर्मा हुए डिप्रेशन का शिकार, मुझे पता चला अच्छा ये है मुझे। देखो हाँ, गिन्नी मेरी एक यू नो स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह मेरे साथ रही है, और हाँ वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है मेरे लिए मेरी लाइफ में, जिसने उस समय मुझे बूस्ट किया कि नहीं, पब्लिक तुम्हें प्यार करती है, तुम वापस काम पे जाना शुरू करो, शो शुरू करो अपना, तुम्हारा मन लगेगा, बस फिर वापस आ गए।
मैं पहले ये जानना चाह रहा था आपसे कि आप मुंबई आए थे सिंगर बनने के लिए, ये ऐसा है कि कई जगह सुना मैंने?
मैं सिंगर बनने निकला था घर से, लेकिन दिल्ली तक आते आते मेरा विचार चेंज हो गया था, क्योंकि मैंने इतने सारे अच्छे सिंगर्स देख लिए ना, मुझे लगा नहीं अपना कुछ नहीं होने वाला। हाँ वही मैंने जो बोला ना कि हमारी प्लानिंग से कहीं बेहतर ऊपर वाले की प्लानिंग होती है, तो
पर पाजी आप अच्छा गाते हो, ये अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने वाली बात हो गई कि
नहीं। मुझे शौक है गाने का, मैंने अच्छे सिंगर्स को सुना है बहुत, तो जब आप अच्छे सिंगर्स को सुनते हो तो थोड़ा बहुत आप भी थोड़ी बारीकियां सीख लेते हो, पर हाँ सिंगर बनना बहुत मुश्किल काम है, पर हाँ मुझे शौक बहुत है, मैं पूरा करता रहता हूँ बीच बीच में। कभी एक फिल्म में गवा लिया किसी दोस्त ने, कभी की सिंगल की तैयारी चल रही है, ऐसा कुछ चलता रहता है।
पाजी कुछ सुना दो थोड़ा सा हल्का सा।
अरे यार मैं एक्चुअली ना रात पर सोया नहीं,
पर सुबह कोई नहीं, देखो मैं आप बताऊं, हिंदुस्तान की पब्लिक कपिल शर्मा को सबसे आखिर में जज करेगी। आपसे इतना प्यार है लोगों को कि इस पे तो कोई बात ही नहीं करने वाला कि सुर कहां लगे नहीं लगे।
क्या सुनाऊं आपको बताओ?
कुछ भी पाजी, कुछ भी आप दिल से जो सुनाना चाहो। ऐसा मान लो कि आप अमृतसर के खेतों में खड़े हो और वहां क्या सुनाएगा कपिल शर्मा जब उनके घर जाएंगे?
मेरे अमृतसर में खेत होते तो मैं मुंबई क्यों आता, मेरा अमृतसर में कोई खेत नहीं है। मैं कुछ मुझे एकदम से कोई याद नहीं आता, जब मुझे कोई फरमाइश कर देना तो मैं
थोड़ा टाइम ले सकते पाजी। हिंदी पंजाबी पॉलिटिक्स
आप बता दो, कोई आपके दिमाग में गाना आ रहा हो, उसे तो मुझे आता ही हो।
कोई पंजाबी फोक सुनना चाहते हैं पाजी आप, मुझसे जो ऐसे ही गुनगुनाते हो आप
पंजाबी फोक? हीर के बारे में सुना आपने?
हाँ हीर सुनाओ प्लीज।
नहीं हीर जो लड़की है उसके बारे में सुना होगा? वारिस शाह जी ने।
हाँ
मैं सुनाता हूँ आपको। हीरे आँख दी वे जोगिया झूठ आखें ते कौन रुठड़े यार मनाव दाई हाँ ऐसा कोई न मिले मैं ढूंढ थकी हाँ ते जेड़ा गयां मोड़ ले बदाई अभी बहुत
क्या बात है भाजी। अब देखो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आदमी खुद को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश करता है, इतना भी किसी को मालूम हो जाए ना वो आज के डेट में सिंगर बनने के लिए तैयार है, बाकी तो ऑटो ट्यून काम कर ही रहा है आपको मालूम है। भाजी कुछ लिसनर्स के सवाल हैं। शिखा कह रही हैं आपने इतने सारे स्टार्स का इंटरव्यू लिया है कपिल सर, सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग किसके साथ रहा?
देखिए
तो लड़ाई करवाने वाली बात है,
नहीं लड़ाई करवाने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ सबका ह्यूमर अलग अलग तरीके का होता है। बहुत मजा आता है, स्पेशली मुझे मजा आता है जब अक्षय पाजी आते हैं, क्योंकि उनको सब चीजें साइड में, उनको ये है कि इसको मैं कैसे पकड़ूं, इसको कैसे दबाऊं, तो अक्षय पाजी के साथ बहुत मजा आता है। बाकी सबके साथ मजा आता है, पर ऐसे मुझे लगता है कि एक दो नाम लेना ठीक नहीं होगा, काफी सारे हैं क्योंकि सारी इंडस्ट्री के साथ हम लोग शोज कर चुके हैं, तो हमने 500 से ज्यादा एपिसोड कर लिए, इतने स्टार्स भी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, तो सबके साथ काम कर चुके हैं, सबका अपना अपना फ्लेवर है, लेकिन अक्षय पाजी के साथ बड़ा मजा आता है, बड़ी एनर्जी होती है। एक तो सुबह सुबह उठा लेते हैं आपको वो, है ना, खुद तो 4 बजे उठते ही हैं, पता नहीं 4 बजे उठते करते क्या है वो, हमें तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, 4 बजे उठ जाओ कुछ करने के लिए होता नहीं, वो उठ के 6 बजे नरेशन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर मैं वैसे झूठ बोलता हूँ लोगों को कि मैं 4 बजे उठता हूँ, जिस दिन अक्षय पाजी ने आना होता मैं सोता ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं सो गया तो फिर सोता नहीं जाएगा।
एक आखिरी सवाल है श्वेता का, ये पूछ रही है कि अगर किसी को कॉमेडियन बनना हो तो वो क्या करे?
यार मैं सच में बताऊं, ये रियाज ही है बेसिकली, क्योंकि अगर आपको सिंगर बनना है तो आप किसी अच्छे गुरु के पास जाएं, किसी म्यूजिक स्कूल के पास जाएं। स्टैंड अप कॉमेडी में जो मेरा तजर्बा है, जो मैं समझता हूँ, जितनी मेरी समझ है, मुझे ये लगता है कि जितना आप स्टेज शोज करो उतना ही आपकी स्पीच भी अच्छी होती है, आपका मेन बात है कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? काम करके। तो जितना आप काम करोगे, चाहे छोटे शोज हैं बड़े शोज हैं, मैंने थिएटर बहुत किया पहले, तो वो थिएटर करके, थिएटर में क्या होता है, कोई रीटेक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 2 घंटे का प्ले है, सामने ऑडियंस है, तो जब आप ऐसे काम करते हो तो यार कोई रीटेक नहीं है, उसमें मेहनत बड़ी होती है। फिल्मों में तो पता है 2 लाइनें बोलनी है, उसके बाद फिर कट है, फिर अलग एंगल से शूट करेंगे, तो जितना काम करते जाओ आप, दुनिया को ऑब्जर्व करो क्या हो रहा है आसपास, कोई भी बात अगर आपने कहनी है, सपोज आपको कहीं कोई पॉलिटिकल स्टायर करना है, हमारे शोज में ऐसा होता नहीं है क्योंकि जी इसी चैनल पे अलाउड नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी बात के ऊपर अगर आपने कटाक्ष करना है, उसको आप हंसी में अगर बोल दो तो जिसके बारे में बोल रहे हो वो भी गुस्सा ना करे और हंसी भी आ जाए, तो ये आपकी जीत है। सो आई थिंक रियाज है, काम है जो, और आजकल तो बड़ा बड़ा बहुत बढ़िया हो गया है, हमने जब शुरू किया था तब तो ये सब नहीं था, अब तो YouTube है, अगर आपको अपना अच्छा कोई कंटेंट बनाया, आप अपना चैनल बनाओ, उसके ऊपर अपना क्लिप बना के शूट करके डाल दो, धीरे 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 करके लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, तो एक रास्ता मिल जाता है अपने आप।
जी ये एक ऐसा सवाल है जो मैं चाहता हूं कि ये आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर कोई किस्सा है उसके जरिए बता पाएं। इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाजी जिनकी नौकरियां जा चुकी हैं, बिजनेसेस थे जो ठप पड़ चुके हैं, ये तमाम लोग इस वक्त चाहते हैं अपनी जिंदगी में बाउंस बैक करना, लेकिन एक हौसला नहीं आ रहा है, उम्मीद नहीं आ रही है, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये तमाम लोग आपके फैंस हैं।
जिन भी लोगों के साथ जो इस समय, इस ऐसा समय जो इनके साथ जो फेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि सब वापस से जल्दी ट्रैक पे आ जाए, सब जल्दी ठीक हो जाए, और दूसरी बात मैं जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तो खैर एक कोरोना की वजह से ये सब हो रहा है, मेरी लाइफ में जब ये सब हुआ था तो शायद उस समय तो कोरोना भी रीज़न नहीं था, अपना ही दिमाग नेगेटिव हो गया था, तो आप कहते हैं ना कि मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत, अगर आप मन से नहीं हारे हो तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, कोई बात नहीं, वक्त है ये भी निकल जाएगा, अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा तो वैसे भी ज़्यादा देर के लिए नहीं आता, तो आप हिम्मत नहीं हारनी है और बस ईश्वर सब देख रहा है, सब सही होगा, बस मेहनत करते रहिए, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो जल्द ठीक हो जाएगा ये भी,
और बाकी आपका आपका शो वीकेंड बनाता रहे।
हाँ बस ये तो हम कर रहे हैं, बस आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए हमारे शो को।
थैंक यू सो मच, आपने इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू भाई।
ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, और अपडेट्स चाहते हैं, तो रीच आउट कीजिए ना हमें। देखिए फीवर FM ऑफिशियल इज आर हैंडल, और HT स्मार्टकास्ट, ये दो हैंडल हैं जो आपके काम के। हम FB पे हैं, इंस्टा पे हैं, ट्विटर पे हैं, यूट्यूब पे हैं, लिंक्डइन पे हैं, क्लब हाउस पे हैं, हर जगह मौजूद हैं। तो मुलाकात होती है अगले एपिसोड में, और आप और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट अगर सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू htsmartcast.com और सुनिए नए नजरिए से। बाय बाय।
आप सुन रहे हैं HT Smartcast और ये था फीवर FM प्रोडक्शन HT Smartcast।